पहले सुनिएगा। चुंबक द्वारा लोहे का आकृष्ट होना स्वाभाविक है, उसी तरह सारे जीवों का कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है, और इसलिए भगवान का असली नाम कृष्ण है, जिसका अर्थ है हर एक को तथा हर वस्तु को आकृष्ट करने वाला। ऐसे आकर्षण के विशिष्ट उदाहरण वृंदावन में मिलते हैं, जहां हर वस्तु तथा हर कोई कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है। नंद महाराज तथा यशोदा देवी, वयोवृद्ध लोग, श्रीदामा, सुदामा तथा अन्य ग्वालपाल जैसे मित्रगण तथा श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखी गोपियां और यहां तक कि पशु पक्षी, गायें तथा बछड़े तक आकृष्ट होते हैं। बगीचों के फूल फल आकृष्ट हैं, यमुना की तरंगे आकृष्ट हैं, तथा स्थल, आकाश, वृक्ष, लताएं, पशु तथा अन्य सारे जीव आकृष्ट हैं। वृंदावन में प्रत्येक वस्तु की ये स्वाभाविक स्थिति है। वृंदावन के व्यापारों से सर्वथा विपरीत यह भौतिक जगत है। यहाँ सारे लोग कृष्ण द्वारा नहीं अपितु माया द्वारा आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का यही अंतर है। हिरण्यकश्यप इस भौतिक जगत में होने के कारण स्त्रियों तथा धन के द्वारा आकृष्ट था, जबकि प्रहलाद महाराज अपनी स्वाभाविक स्थिति में होने के कारण कृष्ण द्वारा आकृष्ट थे। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद महाराज का पृथक दृष्टिकोण क्यों है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी दृष्टि पृथक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने की है। प्रहलाद ने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण इसलिए भिन्न लगता है क्योंकि हिरण्यकश्यप अप्राकृत रूप से कृष्ण से अनाकृष्ट है, अतएव उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जो ही मनुष्य भौतिक कर्मश से शुद्ध हो जाता है, तो वह पुनः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत् परत्वेन निर्मलम्। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्र तृप्ति की धूल से कलुषित है और वह विभिन्न उपाधियों के अनुसार कर्म करता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी देवता के रूप में, तो कभी वृक्ष के रूप में। उसे इन सारी उपाधियों को धोकर दूर कर देना चाहिए, तभी वे स्वाभाविक स्वभावतः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होगा। भक्ति द्वारा जीव अपने समस्त अस्वाभाविक आकर्षणों से शुद्ध हो जाता है। जब वह शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है और तब माया की सेवा ना करके कृष्ण की सेवा करने लगता है। यही उसकी प्राकृत स्थिति है। भक्त कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है, लेकिन अभक्त भौतिक भोग की धूल से कलुषित होने के कारण आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। जिन्होंने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म जीवन में पुण्य कर्म किया है, जिनके पाप कर्म पूरी तरह उन्मूलित हो चुके हैं और जो भ्रम से, द्वैत से मुक्त हैं, वे ही संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में संलग्न होते हैं। मनुष्य को संसार की पापमय धूल से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छा से दूषित है। जब तक वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेता, तब तक वह कृष्ण द्वारा आकृष्ट नहीं होता।
मुझे थोड़ा सा बोलते हुए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस क्लास से पहले, वर्स नंबर 14 से पहले 13th वर्ड इसके माधवानंद प्रभु ने लिया था और 12th वर्ड इसके रुक्मिणी कृष्ण ने लिया था, तो उन दोनों के बाद बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जब हम प्रसाद पाते हैं, कुछ खाते हैं, तो कड़वी चीज़ पहले खाई जाती है, तो ये क्या कड़वा आपको बाद में सुनना पड़ेगा, मीठा पहला सुन चुके हैं। तो जब मुझे वर्ड्स पता लगा इसका, तो जब मैंने इसका तात्पर्य देखा, तो जनरली मेरा थोड़ा सा मुझे हमेशा रहता था कि मेरे का जब भी प्रवचन लेक्चर था तो हमेशा 2 या 3 लाइन का परपट ही होता था, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि कभी बड़ा परपट होगा तो अच्छी तरीके से कुछ बोल पाऊंगा। तो आज इतना बड़ा परपट था, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स प्रभुपाद जी इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। शुरू शुरू में पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत का हर चीज है, चाहे वो हमें देखने में जड़ लगे या चेतन,
पर वो जो भी है वो कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से आकर्षित है। और दूसरी उसमें प्रभुपाद जी पैराग्राफ में बता रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिक संसार का हर व्यक्ति आध्यात्मिक संसार के व्यक्ति से बिल्कुल विपरीत है, किस प्रकार आध्यात्मिक संसार के हर व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षित है। प्रभुपाद बता रहे हैं पशु पक्षी लताएं वृक्ष आकाश स्थल यमुना, हर को यमुना की तरंगे कृष्ण के प्रति आकर्षित है, पर भौतिक संसार में क्या है बिल्कुल इसका विपरीत है। और इसी तरह प्रभुपाद आगे इसको बताते हुए प्रभुपाद इसका अंत कर रहे हैं इस तात्पर्य का ये बताते हुए कि किस प्रकार से हर जीव का स्वाभाविक स्तर यही है कि उसको कृष्ण के प्रति आकर्षित होना चाहिए, परंतु ये भौतिक इच्छाओं के कारण कोई भी कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहा। तो इसका अनुवाद मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, पर अनुवाद में बता रहे हैं हे ब्राह्मणों जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोहा स्वतः चुंबक की ओर जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट होती है, इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो यहां पर क्या बता रहे प्रहलाद महाराज की मुझे किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो कह रहे मैं अधीन हूं कृष्ण के, डिपेंडेंट हूं। तो आज हम जिस बीच में चर्चा करेंगे कि कृष्ण का रेसिप्रोकेशन कि किस प्रकार से कृष्ण भक्तों के प्रति आदान प्रदान करते हैं और उन भक्तों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जो सिंसियर है, और किस प्रकार कृष्ण कभी अपने भक्तों को भूलते नहीं है, चाहे भक्त ने छोटी से छोटी सेवा भी भगवान के प्रति क्यों ना की। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु जी कोई देख नहीं रहा, हमारी सेवा ऐसी है, परंतु फिर भी अगर हमने बिल्कुल अल्प से अल्प सेवा छोटी से छोटी सेवा क्यों नहीं की, पर कृष्ण उस सेवा को कभी नहीं भूलते, और यही कृष्ण की महानता है। तो जिस प्रकार भक्त है भगवान को समझते हैं, भक्त ये समझते हैं कि मैं भगवान के अधीन हूं, उस तरीके से भगवान का भी यही सेम विचार है। भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीन हूं, भगवान कह रहे हैं मैं भी इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मुझे भी कौन कंट्रोल करते हैं, मेरे डिवोटीज मेरे भक्त मुझे कंट्रोल करते हैं। क्यों भक्त कंट्रोल कर पाते हैं कृष्ण को, क्योंकि जो भक्त है उनका एब्जॉर्प्शन उनकी जो मति है हमेशा कृष्ण में लगी रहती है। तो कृष्ण लीला से ही हम लोग डिस्कस करते हुए क्योंकि श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंद में जो इसका था वो प्रिपरेशन था, 9 कैंटोस प्रिपरेशन है 10th कैंटो के लिए, और 10वें और 11वें स्कंद में कृष्ण लीला बताई गई है। तो किस प्रकार से जब कृष्ण का जन्म होता है तो जन्म पे जितने भी ब्रजवासी हैं सब त्योहार मनाते हैं, बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, और सबकी जो मति है सबकी चेतना कृष्ण में लग जाती है। जितने भी ब्रजवासी हैं सुबह अगर जा रहे होते हैं अपने काम के लिए, या जो माताएं हैं जो गोपियां हैं वृद्ध गोपियां, वो अपने काम पे जब शुरू करती थी तो पहले कृष्ण का दर्शन करती थी। और किस प्रकार से जब कृष्ण जब चले जाते थे गाय चराने के लिए, जब बड़े हो जाते थे, तो किस प्रकार से गोपियां प्रतीक्षा करती थी कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण के द्वारा दर्शन होंगे। जब दूर से धूल उड़ती हुई नजर आती थी तो उनको पता लग जाता था कि कृष्ण आ रहे हैं दूर से। तो इस प्रकार से किस प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण के जन्म में सबने अपनी मति को कृष्ण में लगाया। उसके बाद किस प्रकार जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस ने नाना प्रकार के असुरों को भेजना शुरू किया, अरिष्टासुर केशरी। हालांकि जब केशरी असुर को भेजा था कंस ने, तो आचार्यों के अनुसार केशी को भेजने से एक साल पहले तक कंस ने किसी को नहीं भेजा, क्योंकि कंस बहुत डर गया था, उसके सारे मित्र खत्म होते जा रहे थे, जितने मित्रों को भेजता था सब खत्म हो जाते थे। जब अरिष्टासुर आया था तो कृष्ण के एक धक्के से 18 कदम दूर जाके गिरा था। तो एक साल तक कंस ने किसी असुर को नहीं भेजा। जब नारद मुनि ने सोचा कि कंस ने असुरों को भेजना बंद कर दिया है, अगर ये सुधर गया तो कंस का नाश कैसे होगा, पृथ्वी से बाहर कैसे खत्म होगा, तो नारद मुनि गए कंस के पास और सब कुछ बताया उन्हें कि किस प्रकार देवकी और वासुदेव ने आपके प्रति प्लॉटिंग की है, किस प्रकार से कृष्ण को निकाल के, ये जो कृष्ण लड़का जो सारे असुरों को मारता जा रहा है ये वही है जो तुम्हारी हत्या मृत्यु का कारण बनेगा। तो नारद मुनि ने उकसाया, कुछ लोग सोचते हैं कि नारद मुनि को आग लगाने की आदत है ना,
अभी भी कुछ लोग अगर किसी को अगर जो डिप्लोमेट है तो उनको लोग नारद मुनि बनाते हैं, पर ये आग लगाने की आदत नहीं है, ये कृष्ण के प्लान्स में सहयोग करते हैं, कृष्ण की सहायता की जा रही है उनके जो लीलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो जब कंस ने सुना तो उसको दोबारा क्रोध आया। एक साल तक उसने कोई असुर नहीं भेजा था, अरिष्टासुर के बाद एक साल के बाद उसने केशी को भेजा, और जब केशी आया तो कृष्ण मुंह खोल के भाग रहा था कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण का अच्छा लगता तो कुछ खाना चाहता है, तो कृष्ण ने क्या किया अपनी मुट्ठी बंद करके उसके मुंह में डाल दिया, और जैसे उसके मुंह में गया कृष्ण का हाथ उसने विस्तार करना शुरू किया और केशी का गला एकदम चौक हो गया, बंद हो गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो किस प्रकार से ऐसे बहुत असुर आते रहे, पर किसी भी असुर के आने पे जो ब्रजवासी थे, ब्रजवासियों ने असुरों की परवाह नहीं की, ब्रजवासियों को पता था, उनका नेचुरल इंक्लिनेशन था कि अगर मुश्किल आई है तो क्या करना है, कृष्ण की सहायता लेनी है, कृष्ण की ओर भागना है, तो सबने कृष्ण को शरणागत किया। हालांकि भय था, बताया था भक्ति में भय बहुत नुकसान देता है, जो भक्त होता है निर्भीक होता है, परंतु ये जो भय था, कभी कभी भय हमारे सहयोग करता है कृष्ण के प्रति शरणागत होने के लिए, तो ये भय भी उनके लिए क्या मित्र बन गया। तो इसके बाद किस प्रकार से जब कंस था तो कंस ने पूरी योजना बनाई कि मैं कृष्ण को मारूंगा और किस प्रकार से अक्रूर को भेजूंगा, अक्रूर लेके आएंगे कृष्ण को यहाँ पर, द्वार में ही कोल्या पड़े हाथी खड़ा होगा, फिर अंदर चाणूक मुष्टिक सब जो द्वंद युद्ध करने वाले लोग होंगे तो किस प्रकार से हम मारेंगे। तो ये बातें सोचते हुए उन्होंने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर को अपने सारे प्लान्स बताए कि ये मैं चाहता हूं। तो जैसे अक्रूर को सारी चीजें बताए, अक्रूर बहुत खुश हो गए, क्योंकि अक्रूर के अंदर सोच रहे थे कि मैं योग्य नहीं हूं बिल्कुल भी कृष्ण के दर्शन के, पर किस प्रकार से इस कंस की कृपा से अब मैं कृष्ण के दर्शन कर पाऊंगा। अक्रूर अपने आप को बिल्कुल अयोग्य समझ रहे थे, तो बहुत हम्बल बहुत विनम्र हो गए, और कंस ने बहुत सुंदर रथ दिया, नया रथ बिल्कुल ब्रांड न्यू, कि अगर इस रथ को देखेंगे कृष्ण बलराम तो गांव के लड़के हैं ना, अभी किसी गांव के लड़के के पास जाएं उसको अगर आप दिखाएं मर्सिडीज गाड़ी उसको बोल चल शहर चल तो बैठ के चल पड़ेगा। तो यही प्रलोभन देने के लिए कंस ने क्या किया, एक नया रथ भेजा कि इसको अगर देखेंगे कृष्ण बलराम तो इसके प्रलोभन में फंस के मथुरा आ जाएंगे और फिर मेरी सारी प्लानिंग्स पूरी हो जाएंगी। तो जब अक्रूर पूरे रास्ते जा रहे थे तो किस प्रकार से अक्रूर ने भी अपनी मति कृष्ण में लगाई, पूरे रास्ते जाते हुए अक्रूर कृष्ण के नाम रूप गुण लीला पर चिंतन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, और जैसे ही बताया था श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कृष्ण के दर्शन करते ही जब ये विचार आया कि मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा, अक्रूर ने अपना सारा गर्व सारा अभिमान सारा शोक सब त्याग दिया तुरंत, क्योंकि अब वो शोक के दिन खत्म होने वाले थे, अब हैप्पी डेज शुरू हो रहे थे, कृष्ण के दर्शन करने का मतलब अब हैप्पी डेज खुशी के दिन आ रहे हैं। तो किस प्रकार से अक्रूर ने ये चिंतन करना शुरू किया, और जैसे ही अक्रूर वृंदावन में प्रवेश किए, क्योंकि पूरे रास्ते यही सोचते आ रहे थे कि अब मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा, कृष्ण देखने में कैसे होंगे, कैसा रंग होगा कृष्ण का, तो जैसे ही अक्रूर सोच रहे थे तो सोचते सोचते उन्होंने देखा कृष्ण के चरणों के निशान जो जमीन पर थे, और जैसे ही देखे चरणों के निशान अक्रूर तुरंत रथ से कूद पड़े। अभी हम जब प्रणाम करते हैं, जैसे आचार्य बता रहे जब हम प्रणाम करते हैं तो कैसे पहले घुटने टेकते हैं फिर प्रणाम करते हैं, अक्रूर का प्रणाम ऐसा नहीं था, सीधा खड़े खड़े गिर पड़े एकदम, रथ से कूद गए कि कृष्ण के उन चरणों को प्रणाम करने के लिए। और ना केवल उन्होंने कृष्ण के चरणों को प्रणाम किया, जब उन्होंने कृष्ण बलराम के दर्शन किए, कृष्ण बलराम को प्रणाम किया, जितने ग्वाल बाल थे उनको प्रणाम किया, जितनी गायें थी उनको प्रणाम किया, असंख्य गायें थी सबको प्रणाम किया। तो इतना एब्जॉर्प्शन इतना प्रेम कृष्ण से ब्रजवासियों का था, पर संभव अक्रूर जब आए तो कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ चले गए और वृंदावन को उन्होंने छोड़ दिया, वृंदावन को छोड़ दिया उन्होंने, और वृंदावन को छोड़ने के बाद कुवल्या पीड़ हाथी का वध किया, फिर चाणूर मुष्टिक इन द्वंद युद्धियों का वध किया, फिर कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद किस प्रकार से कृष्ण ने अब अपना परिवार शुरू किया, पहले उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया, फिर रुक्मिणी सत्यभामा जामवती एक एक करके अष्ट जो मेन उनकी रानियां थी
और उसके बाद किस प्रकार 16,100 रानियों से विवाह किया उन्होंने, उसके बाद किस प्रकार नरकासुर बाणासुर राक्षसों को मारा, फिर कृष्ण ने इतनी बड़ी कृष्ण ने अपना परिवार बनाया यदुवंशी बनाए, उसके बाद कृष्ण ने अपने मित्र से मिले सुदामा ब्राह्मण से, अगर सुदामा ब्राह्मण की कथा को हम पढ़ेंगे तो हृदय को पिघलाने वाली कथा है कि कृष्ण किस प्रकार अपने भक्तों को अपने मित्रों को कभी भूलते नहीं है। और फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध और यहां तक श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद खत्म हो जाता है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद शुरू हुआ। 11वां स्कंद के पहले अध्याय में कृष्ण ने बीज डाला, किस चीज का बीज डाला, अपने डिसअपीयरेंस का, क्योंकि कृष्ण सोचा कि अब अपनी लीला को वाइंड अप करना है, खत्म करना है। तो कृष्ण ने बीज डाला और बीज किस रूप में था कि जो कृष्ण के पर पौत्र थे सांब, एक बार सभी जितने यदुवंशी थे भाई एक बार सांब को, क्योंकि सांब बहुत सुंदर थे देखने में, सांब को अच्छी सी साड़ी बनाई, उनके पेट पे सराहने को बांधा और ऐसा दिखाया कि जैसे ये गर्भवती स्त्री है, और लेके गए सांब को उन ऋषियों के पास जैसे नारद मुनि व्यास इत्यादि। नारद मुनि व्यास इत्यादि जितने ऋषि थे उन ऋषियों के पास लेके गए और उन्होंने पूछा कि ये जो मेरा भाई, ये जो मेरी बहन है, ये गर्भवती है, तो आप बताइए इसके गर्भ में कौन है, लड़का है या लड़की है। तो ये जो ऋषि थे कोई साधारण ऋषि नहीं थे। आजकल एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में टीवी में बताया था कि वो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है कि अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो उससे आप पूछेंगे कि लड़का है लड़की है, तो आपको बोलेगा लड़की है, पर एक चिट्ठी में लिख देगा लड़का है और अपने एक मित्र को दे देगा। तो अगर लड़की हुई तो बताएगा कि मैंने चिट्ठी में लिखा था कुछ, और अगर लड़का हुआ तो बताएगा कि मैं तो ऐसे ही बता रहा था लड़की है, पर ये देखो मैंने अपने मित्र को क्या दिया था, लड़का होना था। पर ये जो ऋषि थे ये आम एस्ट्रोलॉजर्स नहीं थे, नारद मुनि व्यास बड़े बड़े ऋषिगण थे। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनको लगा कि हमारा अपमान किया जा रहा है, और उन्होंने श्राप दिया यदुवंशियों को कि इस गर्भ से जो पैदा होगा वो तुम्हारे वंश का नाश करेगा। तो उस गर्भ से क्या निकला, एक मूसल थी। जब मूसल को देखा यदुवंशियों ने तो घबरा गए, घबराते हुए उग्र से इनके पास पहुंचे, कृष्ण के पास नहीं गए क्योंकि पता था डांट पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं करते कि आपने ब्राह्मणों से कैसे मजाक किया। तो उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन ने कहा चिंता की बात नहीं है, इसको पिसवाओ और पानी में या समुद्र में डाल दो और कृष्ण को हम लोग नहीं बताएंगे इस बात के बारे में। तो ऐसे ही ये पहला अध्याय था 11वें स्कंद का। इसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में वसुदेव पूछते हैं नारद मुनि से, नारद मुनि से पूछते हैं कि देखो मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया है पर अभी भी मुझे मुक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि वो कृष्ण के पिता थे परंतु फिर भी लीला के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये चिंतन कर रहे हैं कि देखो मैं कृष्ण के बारे में कुछ, मैं अभी मुक्ति के बारे में कुछ जानता नहीं हूं। तो दूसरे से पांचवें अध्याय में नारद मुनि इंस्ट्रक्ट करते हैं वसुदेव को। उसके बाद छठा अध्याय शुरू होता है 11वें स्कंद का, और छठे अध्याय में द्वारका में जब सभी लोग होते हैं तो द्वारका में कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जो सिम्टम्स कलयुग का प्रतीक है। कुछ ऐसे ओमेंस आते हैं आकाश में जो ऑर्डरी नहीं है। तो जब कृष्ण देखते हैं इन लक्षणों को तो कृष्ण कहते हैं कि लगता है कि हमारे इसमें कुछ, हमारे जो समाज में, हमारे देश में, इस द्वारका में कुछ अब कुछ गलत चीजें होने वाली हैं, तो हम चलते हैं प्रभास क्षेत्र में और वहां जाकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हैं हम लोग। तो ये प्रभास क्षेत्र वही स्थान है जहां पर जब यदुवंशी गए तो लड़कर समाप्त हो गए। तो पर जब कृष्ण ये सब चीजें कर रहे थे, जब प्रभास क्षेत्र भेज रहे थे तो उद्धव साथ में थे। हालांकि ये उद्धव गीता का प्रारंभ है यहां से, तो कृष्ण उद्धव के साथ थे और कृष्ण उद्धव कृष्ण के पास गए और उद्धव ने, क्योंकि उद्धव बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कृष्ण को बोला कि देखिए द्वारका में जो लक्षण आ रहे हैं ये कोई साधारण लक्षण नहीं है, और कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं है। तो उद्धव ने कृष्ण को बोला कि देखिए आप इन चीजों को अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कलयुग शुरू होने वाला है और इसका मतलब क्या है, आप अपनी लीलाएं समाप्त करने वाले हैं और मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे आप पहले लेके चाहिए, बाद में आप चाहिएगा। क्योंकि उद्धव समझ गए, उद्धव बहुत बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि आप कृष्ण अपनी पास्ट टाइम को विड्रॉ करने वाले हैं। तो उद्धव ने कृष्ण से प्रार्थना की, तो कृष्ण ने उद्धव को, यही उद्धव गीता का शुरुआत था। और फिर कृष्ण ने अगले कुछ चैप्टर्स में, 7 से लेकर 11 चैप्टर्स, 7 to 11 में उद्धव को संदेश दिया। वैसे 29 चैप्टर तक उद्धव गीता चलती है, तो उद्धव को संदेश दिया वर्णाश्रम के बारे में, कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, और हर चीज समझाते हुए, वर्णाश्रम कर्म ज्ञान समझाते हुए उन्होंने यही बताया कि इन सब चीज की परफेक्शन क्या है, सिद्धि क्या है सब चीजों की, कि मुझ में मन लगाओ, एब्जॉर्प्शन, अपनी मति मुझ में लगाओ। तो ये सब करते हुए कृष्ण ने फिर 7वें अध्याय में 25 गुरु बताए, दत्तात्रेय के समझाए, 10वें अध्याय में वर्णाश्रम, 11वें अध्याय में ज्ञान योग, और किस प्रकार से इस ज्ञान योग का पालन करते हुए मुझे कैसे ढूंढा जा सकता है, ये कृष्ण समझाया। और इसके बाद 11वें अध्याय के बाद जो हमारा आज का टॉपिक है, 12वां अध्याय शुरू हुआ, जिसमें कृष्ण बता रहे हैं कि भक्ति का कारण क्या है। तो कृष्ण शुरू में बता रहे हैं भक्ति का कारण है भक्तों का संग, और कृष्ण बता रहे हैं कि भक्तों की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में बता रहे हैं 12वें अध्याय की, कि जब कृष्ण इस 12वें अध्याय में पहुंचे तो कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए। अभी तक तो उद्धव से बात कर रहे थे, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मनुष्यों के बारे में समझाना शुरू किया 12वें अध्याय की शुरुआत में, कि किस प्रकार से कैसे कैसे मनुष्य मेरे शरण में आते हैं। फिर ब्रजवासियों के बारे में बताना शुरू किया, अलग अलग प्रकार के ब्रजवासियों के बारे में। और फिर कृष्ण जब 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक पर पहुंचे तो कृष्ण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि कृष्ण अब बताने लगे थे गोपियों के बारे में। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण रो पड़े और कृष्ण की आंखों से आंसू आने लगे, और कृष्ण ने फिर अचानक गोपियों के बारे में बोलना शुरू किया। तो कृष्ण जब 10 या 12 साल के थे तब वृंदावन छोड़कर चले गए थे, और क्योंकि कृष्ण अब अप्रकट होने वाले हैं तो कृष्ण 125 साल तक रहे थे इस धराधाम पर। तो 10-12 साल की उम्र में अगर कृष्ण वृंदावन से चले गए थे तो 125 साल की उम्र में, मतलब कृष्ण को ब्रज छोड़े हुए 115 साल हो चुके थे। अगर हम अपने जीवन में देखें तो अगर हमारा कोई व्यक्ति इस शरीर को छोड़ देता है या घर छोड़ देता है, कोई छोड़ता, हम कितने समय उसको याद करते हैं। हमारे से कोई वस्तु छीनी जाती है इससे हम प्रेम करते हैं, कोई व्यक्ति छीना जाता है इससे हम प्रेम करते हैं, कितने समय याद करते हैं? 1 साल 2 साल 10 साल 25 साल 30 साल। 115 साल के बाद कृष्ण क्या याद कर रहे हैं? उन गोपियों को याद कर रहे हैं, उन वृंदावन वासियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मति को कृष्ण में लगाया था। तो 15 मिनट है हमारे पास, तो इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आगे 4 श्लोकों में तो किस प्रकार से कृष्ण यहां पर बता रहे हैं इन 4 श्लोकों में आगे कि जो गोपियों का जो उनका प्रेम है, जो गोपियों की क्वालिटीज थी, वो क्वालिटीज कैसे इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि कृष्ण ने 115 साल के बाद भी उसे भूले नहीं, उसे हमेशा याद रखा। तो ये वर्ड सिर्फ इंग्लिश में है, कोई हिंदी में ट्रांसलेट नहीं, तो मैं चाहता था कि एक बार इस वर्ड्स को एक ही करके हम साथ में पढ़े भी अपने शुद्धिकरण के लिए, तो एक एक बार से पढ़ेंगे। मैं बोलता हूं, आप मेरे साथ साथ बोलेगा, जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते कृपया ध्यान से सुनिएगा। रामेण सार्धम मथुरम प्रणीते श्वफलकीन मयि अनुरक्त चित्तः विगाढ भावेन न मे वियोगा तीव्राधयो अन्यं ददृशु सुखया। तो इसकी इसकी दूसरी लाइन में यहाँ पर बता रहे हैं, मई अनुरक्त चिंता। तो ये फर्स्ट क्वालिटी यहाँ पर बताई जा रही है इस श्लोक में, मई अनुरक्त चिंता। इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद वन टू वन ट्रांसलेशन में इसको, प्रभुपाद जी के शिष्य, मई माई सेल्फ अनुरक्त कॉन्स्टेंटली अटैच्ड चिंता दोज हुज कॉन्शियसनेस वॉज, कि जिन्होंने अपनी चेतना को हमेशा मुझ में लगाया रखा। तो गोपियों की यहां पर चर्चा हो रही है कि जिन्होंने अपनी चेतना को हमेशा कृष्ण में लगाए रखा, और हमेशा इस भौतिक संसार में अगर हम देखें तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें चेतना को हम हमेशा के लिए लगाए रख सके। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा भौतिक मन बहुत फिकल है, बहुत चंचल है। अगर हम किसी चीज में भी अपने मन को लगाते हैं, थोड़े समय बाद मन कुछ और प्रलोभन देता है। मन कहता है कि नहीं नहीं ये, उस समय तो माइंड बहुत फोकस करता है कि अगर ये चीज नहीं मिली तो तू जी ही नहीं पाएगा, तू प्राण त्याग देगा अगर तेरे को ये नहीं मिली, बहुत पूरा जान डाल देता है उसमें। थोड़े समय के बाद फिनिश, बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसमें कुछ टेस्ट नहीं बचता। जिसको मन ने इतना उठाया था उसमें कुछ नेक्टर नहीं बचता, वो सूखा हो जाता है, फिर मन किसी और चीज में भागता है। और यही भौतिक जीवन में एडवर्टाइजमेंट करती है, मजबूर कर देती है, दिखा दिखा के यही लो ऐसा करो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और व्यक्ति का मन बिल्कुल पागल हो जाता है, उसी के पीछे दौड़ता है केवल, वो पागल घोड़े के समान भागता है पीछे, पर उस व्यक्ति के कंट्रोल, उस व्यक्ति के संयम में नहीं आता। तो बता रहे हैं यहां पर कि जो गोपियां थी उन्होंने मई अनुरक्त चित्ता अपने मन को मुझ में लगाया। आगे क्या बता रहे हैं यहां पर, विकार भावे ना नमे वियोगा, तो यहां पर बता रहे विकार भावे ना, जो उनका जो प्रेम था वो क्या था, विकार भावे ना, बहुत बहुत डीप था उनका प्रेम। और बता रहे हैं कि आप सोचिए कि किसी ऐसी चीज से अगर हम प्रेम करते हो जिसे हम एक सेकंड के लिए भी, एक मोमेंट के लिए भी अपने से दूर नहीं देखना चाहते। जब गोपियों की आंखें झपकती थी तो गोपियां ब्रह्मा को गाली देती थी कि कैसी आंखें बनाई हैं, कृष्ण के दर्शन ही नहीं हो पाते, हमारे से अच्छे तो मछलियों की आंखें हैं, झपकती तो नहीं है कम से कम। गाली देती थी वो ब्रह्मा को जब आंखें झपकती थी। और ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो इतना प्रेम करता हो किसी से, अगर उसके लिए वो व्यक्ति 110 साल तक ना आए तो क्या हालत होगी। आप सोचिए अगर हमारे जीवन में अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी वस्तु से प्रेम, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, अगर उस समय के लिए हमारा छिन जाए तो हम क्या उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। अब ये नहीं तो और क्या चीज हो सकती है जिसमें मैं अब वो प्रेम वो उससे हासिल कर सकता हूं, और क्या हो सकता है। पर गोपियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहां पर बता रहे तीव्राद्यो अन्यम ददृशु सुखिया, बता रहे तीव्राद्यो इंटेंस ओवर एक्सपीरियंसिंग मेंटल डिस्ट्रेस, पूरी तरीके से दुख भोग रही थी गोपियां, दुखी थी, परेशान थी, रोती थी। जो ब्रजवासी थे, तो यशोदा माता ने बताया था कि घर के बाहर से एक नदी निकल रही थी गर्म पानी की, उनके आंसू की थी। और ब्रजवासियों ने कृष्ण के जाने के बाद कभी सोए नहीं थे, कभी खाया नहीं था, कभी पिया नहीं था कुछ। भौतिक संसार में किसी का कोई प्रिय अगर शरीर छोड़ देता है, व्यक्ति खाना नहीं छोड़ता, रोता है मुझे छोड़ के चले गया, अब मुझे कौन खिलाएगा, अब मेरी रक्षा कौन करेगा, अब दुखों में कौन काम आएगा, पर खाना नहीं छोड़ता, पीना नहीं छोड़ता, सोना नहीं छोड़ता। हमारे जो आंसू होते हैं वो एक मेटीरियल मशीन की तरह होते हैं, जैसे उस घर पे पहुंचते हैं जिसमें किसने शरीर छोड़ा है, वो बटन ऑन होता है, आंसू बहते हैं, बाहर निकलते हैं, फिनिश, वो खत्म हो जाता है। पर गोपियों के साथ ऐसा नहीं था। तीव्राद्यो अन्यम ददृशु सुखिया, बता रहे हैं अन्यम ददृशु सुखिया, उन्होंने और किसी जगह पर सुख ढूंढने की कोशिश नहीं की, कभी कभी भी सुख ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो बताया था कि उनका प्रेम था, जो उनकी अटैचमेंट थी कृष्ण के प्रति, वो कांस्टेंट थी, हमेशा बनी रहती थी, कंप्लीट थी, पूर्ण थी और एवर इंक्रीजिंग थी। अगर हमें कुछ छोड़ के चले भी गया, हमारा उसके प्रति प्रेम बना रह सकता है, पर एवर इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, हमेशा बढ़ता रहे ये नहीं हो सकता, उनका प्रेम हर पल पल बढ़ता था कृष्ण के प्रति। तो ये उनकी स्थिति थी। और क्योंकि यहां पर बता रहे हैं द रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन, जो वृंदावन वासी थे, हेडेड बाय द गोपीज, जो गोपियां थी, वर ऑलवेज कंप्लीटली अटैच टू मी, हमेशा मुझ में आसक्त रहती थी, विद डीपेस्ट लव, उनका जो प्रेम था बहुत गहरा था। देयरफॉर इसलिए व्हेन माय अंकल अक्रूरा ब्रॉट माय ब्रदर बलराम एंड मी टू द सिटी ऑफ मथुरा, जब मेरे अंकल अक्रूर मुझे मथुरा लेके आए, मुझे और बलराम को, द रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन सफर्ड एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस, जो वृंदावन वासी थे उन्होंने बहुत दुख सहा, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मी, मैं दूर हो गया इसलिए, मेरे से जो हमें वो व्यक्ति वो चीज नहीं दे पाया इसलिए नहीं, कृष्ण दूर हो गए इसलिए रो रहे थे, एंड कुड नॉट फाइंड एनी अदर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, और क्या है, और किसी जगह पर वो आनंद को नहीं ढूंढ पाए, उनको आनंद कहीं नहीं मिला, फाइंड कहीं नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कहीं ढूंढा नहीं तो कहीं मिला ही नहीं उनको आनंद। तो जो भौतिक संसार की डेफिनेशन है प्रेम के प्रति, वो बिल्कुल विपरीत है। भौतिक संसार का प्रेम बहुत ही फिकल है, बहुत ही चंचल है, और पर ये जो आध्यात्मिक प्रेम है जो गोपियों ने यहां पर दिखाया वो पूर्ण है। तो इस वर्ड से हम एक क्वालिटी जो सीख सकते हैं गोपी की, फुल अटैचमेंट टू कृष्णा, कृष्ण के प्रति पूरी आसक्ति, ये गोपियों ने बनाई थी। तास्तः शपः प्रेष्ठात्मेन नीता, मय्येव वृन्दावनगोचरेण शनार्दवत्तः पुनरङ्गतासां हीना मया कल्पसमाबभू। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो समय मैंने गोपियों के साथ बिताया, जितना समय मैंने ब्रज में बिताया, कृष्ण बता रहे हैं, वो समय, वो सारी रातें नीता शपा, शपा का मतलब नाइट्स, तो वो सारी रातें बता रहे हैं कृष्ण, वो जितनी भी सारी रातें थी, वो रातें कैसी थी, जब कृष्ण गोपियों के साथ रास करते थे, वो एक रात ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होती थी। वो सारी रातें कृष्ण कैलकुलेट कर रहे हैं, और कृष्ण कैलकुलेट करके क्या बता रहे हैं, वो सारी रातें गोपियों को कैसी लगती थी, एक मोमेंट के बराबर, जितनी देर में हमारी एक पलक चमकती है इतनी सी लगती थी गोपियों को, एक फ्लैश की तरह, बिजली की तरह है बस। और यहां पर कृष्ण एक बहुत ही अच्छा थर्ड लाइन में शब्द यूज कर रहे हैं अंगा, ये अंगा शब्द यूज कर रहे हैं उद्धव के लिए, ये अंग शब्द यूज करते हुए कृष्ण प्रभुपाद यहां पर बता गए डियर उद्धव, अंग का मतलब माय बॉडी पार्ट, कृष्ण उद्धव कह रहे हैं तुम तो मेरे शरीर का अंश हो इसलिए मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूं, जैसे कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे गीता में कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो इसलिए मैं संदेश तुम्हें दे रहा हूं, तो वही उद्धव गीता में कृष्ण यहां पर बता रहे हैं कृष्ण उद्धव को कि तुम मेरे शरीर का अंग हो इसलिए मैं बातें तुम्हें बता रहा हूं, कि बता रहे कि जिस प्रकार से जितने समय तक गोपियों ने मुझे नहीं देखा, जितने समय मैं गोपियों के साथ था, वो गोपियों को कैसे लगा, एक मोमेंट के बराबर। और बता रहे हैं कृष्ण आखिरी लाइन में यहां पर हीना मया कल्प समा बभुवु, कि जब से मैं गोपियों को छोड़कर गया हूं 110 वर्षों से, एक एक मोमेंट, पहले क्या एक एक रात जो ब्रह्मा के दिन के बराबर थी वो गोपियों को एक मोमेंट के बराबर लगती थी, अब कृष्ण कह रहे हैं एक एक मोमेंट, एक एक पल गोपियों को ब्रह्मा की रात के बराबर प्रतीत हो रहा है। डियर उद्धव, ऑल ऑफ दोस नाइट्स, वो सारी रातें that gopi spent with me, जो गोपियों ने मेरे साथ बिताई, their most dearly beloved, उनका प्रिय, in the land of Vrindavan, Vrindavan क्षेत्र में, seemed to them to pass in less than a moment. वो कैसे गोपियों की तरह बीत गया? एक moment की तरह, ऐसे. Bereft of my association, बिना मेरे संग के. However, the gopis felt that those same nights dragged forever. कि बिना मेरे बिना वो वही रातें ऐसा है कि खिसती ही जा रही है, खिसती ही जा रही है, बीत ही नहीं रहा समय. As if each night was equal to a day of Brahma. जैसे एक एक रात ब्रह्मा के दिन के बराबर हो. तो ये थी गोपियों की स्थिति. और ये कृष्ण कितने सालों बाद बता रहे हैं? 110 सालों के बाद याद रखा हुआ है कृष्ण ने. तो अगर हम भी देखिए हमारे अगर हम कृष्ण भावना व्रत में आते हैं, कृष्ण भावना व्रत में आने के बाद भी अगर क्योंकि हम लोग टाइम के प्रति इतने कैलकुलेटेड नहीं रहते और नेचुरली ही काफी सारी चीजों में हम अपने समय को व्यर्थ करते हैं, पर इस श्लोक से इस क्वालिटी से गोपीस की हम लोग ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार ने गोपीस ने एक चैनल बताया है, एक रास्ता बताया है कि कृष्ण को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं. तो यहां पर गोपियां बता रही हैं कि जो उनके प्रति कृष्ण के प्रति जो समय का कैसे सदउपयोग, कि जब कृष्ण के साथ थे तो समय का पता नहीं लगता था. अगर हम अपनी स्थिति को देखें तो स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है. जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करते वक्त वो एक एक समय हमें लगता है कि वो एक एक ब्रह्मा जी के दिन के बराबर जा रहा है, वो खत्म ही नहीं होता. और जब हम ऐसी चीजों में जुड़ते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो वो समय हमारे लिए कैसे जाता है? बहुत ही जल्दी बीत जाता है. तो हमारी जो स्थिति है बिल्कुल विपरीत है. और ये स्थिति बताती है कि कृष्ण भावना में जो हमारा टेस्ट है वो अभी हमारा जो रुचि है वो कृष्ण भावना के प्रति नहीं है. हमारा जो टेस्ट है वो भौतिक संसार के प्रति है और भौतिक संसार की चीजों के प्रति है. जो किससे तुलना की गई है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, उनकी तुलना बता रहे हैं ऐश के समान. प्रॉपर की तात्पर्य बता रहे हैं सैंड. इसमें बता रहे धूल से, धूल बता रहे हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से ऐश बता रहे हैं, राख. तो किस प्रकार से हम लोग भौतिक, कैसे गोपियां कृष्ण के पीछे भागती थी और हम लोग कैसे भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, और वो हमें अंत में क्या देती है? भौतिक चीजें राख का टेस्ट देती है. कोई अगर मुट्ठी भर राख खा ले उसको कैसा टेस्ट आएगा? वो टेस्ट हमें मिलता है. उसके बाद में हमें समझ नहीं आता, मन कहता कि नहीं इसमें मजा नहीं आया, वो करके देख, उसमें एक अलग मजा आएगा, वो भी करके देखते हैं, उसमें भी स्वाद राख का आता है. फिर तीसरी कोई चीज करके देखते हैं, उसमें भी स्वाद राख का आता है. पर तो रियल टेस्ट कृष्ण की प्रेजेंस में है. कृष्ण की प्रेजेंस कैसे? कृष्ण की प्रेजेंस हमेशा हर समय, हमारी सेवा के समय भी. कभी कभी हम सर्विस तो कर रहे होते हैं पर हम सर्विस में प्रेजेंट नहीं होते, कृष्ण उस समय सेवा में प्रेजेंट नहीं होते, हमारी मति कहीं और होती है. तान विदन्मयि अनुसंगबद्धा धियः स्वमात्मनम् अदस्ततथेदम् यथा समाधो मुनयो भितो ये नरया प्रविष्टा इव नाम रूपे. हम क्या इससे एसेंस ले सकते हैं? वैल्यू ओनली कृष्णास एसोसिएशन, जो पिछला श्लोक था उससे, कि केवल कृष्ण के संग को ही वो वैल्यू देते थे, गोपियां वैल्यू देते थे. तो यहां पर बताया गया है तीसरे श्लोक में यहां पर अनुसंग बद्धा, और अनुसंग बद्धा का मतलब है बाय इंटीमेट कॉन्टेक्ट बाउंड अप. क्योंकि गोपियां बता रहे हैं कि पूरी तरीके से मुझ में बंधी हुई थी. जब मैं फिजिकली प्रेजेंट था तब भी वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, और जब मैं चले गया छोड़कर, तब वो मानसिक रूप से हमेशा, उनकी चेतना हमेशा मुझ में लगी रहती थी, चेतना वाइज उन्होंने कभी मुझे छोड़ा नहीं। तो ये यहां पर रिमेंबर कर रहे हैं। और
नेक्स्ट, समय बहुत हो चुका है,
बता रहे माय डियर उद्धवा, जस्ट एज ग्रेट स्टेजेस इन योर ट्रांस मर्ज इनटू सेल्फ रियलाइजेशन। यहां पर कृष्ण इसकी तीसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि किस प्रकार हे उद्धव, जिस प्रकार जो सेजेस हैं, जो साधु होते हैं, जब वो समाधि में बैठते हैं तो उसी तरीके से समाधि में लीन हो जाते हैं जिस प्रकार नदियां पानी में, समुद्र में लीन हो जाती हैं, एंड आर दस नॉट अवेयर ऑफ मटेरियल नेम्स एंड फॉर्म्स, और किसी प्रकार के भौतिक नाम और रूप से आकर्षित नहीं होते। सिमिलरली द गोपीज ऑफ वृंदावन, उसी प्रकार से जो गोपियां थी वृंदावन की, वर सो कंप्लीटली अटैच्ड टू मी, पूरी तरीके से मुझ में लगी हुई थी अपने मन के द्वारा, दैट दे कुड नॉट थिंक ऑफ देयर बॉडीज और ऑफ दिस वर्ल्ड, कि ना अब वो अपने शरीर के बारे में सोच पा रही थी, ना इस संसार के बारे में सोच पा रही थी, और ना अपने भविष्य के बारे में सोच पा रही थी। Their entire consciousness was simply bound up in me. उनकी पूरी चेतना मुझ में लगी हुई थी। तो ये उदाहरण हम अच्छी तरीके जानते हैं कि किस प्रकार नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो अपना सब कुछ, अपना जो मेन स्वरूप है उसको खो देती हैं, खत्म हो जाता है। किस प्रकार योगी जब ट्रांस बैठते हैं तो वो अपने आप को लीन करना चाहते हैं। तो बता रहे कृष्ण बता रहे हैं यहां पर कि गोपियां भी उसी प्रकार से मेरे स्मरण में, मेरे चिंतन में बंधी हुई थी कि वो और कुछ नहीं सोच पाती थी। नौ बज गए, मैं पांच मिनट में और खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसी श्लोक पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ बताते हैं। By his amazing pastimes, Krishna stunned all the three worlds. अपनी दिव्य लीलाओं से कृष्ण ने तीनों संसारों को स्तंभित कर दिया। By his constant association, अपने संग से, with great strength, he bound up the gopis. अपनी शक्ति से उन्होंने गोपियों को बांध दिया। The function of their intelligence become like desire cow, fulfilling Krishna desire. उनका जो मन का function था वो उसी तरह बन गया एक कामधेनु गाय के समान जो केवल कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति करती थी। Their intelligence, mind, senses completely existed to fulfill Krishna desire, and they, उनका जो मन, चेतना और इंद्रियां और बुद्धि पूरी तरीके से कृष्ण की सेवा करने में लगी हुई थी, और हमेशा वो कृष्ण 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 के बारे में ही सोचती थी। Did not even know their own bodies, अपने शरीर के बारे में नहीं सोचती थी। और जब वो रास नृत्य पे जाती थी वो ये नहीं सोचती थी कि वो कहाँ जा रही हैं, किधर जा रही हैं। जो कृष्ण की जो बांसुरी की ध्वनि उन्हें खींचती थी और उन्हें पूरी तरीके से नशे में पागल हो जाती थी गोपियां। दे कुड नॉट रेजिस्ट, अपना को रोक नहीं पाती थी। दिस वॉज द क्वालिटी ऑफ देयर लव, ये उनका गुण था प्रेम का। दे वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के बारे में नहीं जानती थी। नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले संसार के, विश्व संसार के बारे में भी जानती थी आगे क्या होगा। They was on not thinking we have gone against religiosity by leaving our husbands only to serve Krishna. They was like sages in samadhi. तो वो ये नहीं सोचती थी कि किस प्रकार से हम धर्म के विरुद्ध गई हैं, तो समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो उसी प्रकार से उनकी चेतना थी जैसे तरह एक साधुओं की चेतना होती है जो पूरी तरीके से ध्यान में लगी रहती है। तो इसी को आगे बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि अगर किसी का कोई पति है, किसी का कोई पुत्र है, तो गोपियों का ये प्रेम ये दिखाता है कि किसी का कोई भी व्यक्ति अपने पति पुत्र से ज्यादा प्रेम करता है चंद्रमा से ज्यादा, क्योंकि अपने पति पुत्र के प्रति उनका एक पोसेसिवनेस होता है कि मेरे हैं। तो ये पोसेसिवनेस कि ये मेरे हैं, ये वो चंद्रमा के अंदर बहुत गुण है, पर उनको देखिए किसी भी माता को अपने बच्चे में ज्यादा गुण लगता है चंद्रमा से। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिवनेस है, ये मेरे हैं। तो यही श्री प्रभुपाद ने बताया है और यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं। अहम मामेति, ये अहम मामेति, आई एंड माइन, मैं और मेरा, क्योंकि हमें क्या करना है, इस मैं और मेरा की भावना को खत्म करना है। और जब ये मैं और मेरा की भावना कृष्ण में लग जाएगी तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये भावना कि आई एम कृष्णा, शुरू में तो यही भावना आती है आई एम कृष्णा, मैं कृष्ण का हूं, और बाद में प्रोग्रेसिव स्टेज में ये भावना कृष्णा इज माई पोजेसिवनेस, कृष्ण मेरे हैं, इसमें बदलती है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, फुल एब्जॉर्प्शन विद ग्रेट अटैचमेंट इन थॉट्स ऑफ कृष्णा, पूरी तरीके से उनकी एब्जॉर्प्शन कृष्ण में लगी हुई थी। समय ज्यादा हो गया, हम अगले श्लोक को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। All those hundreds of thousands of gopis, अब ये जो क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पर गोपियां बता रही हैं, ये तीनों से अलग आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही अलग है से कृष्ण बता रहे हैं उद्धव को कि ये सबसे ज्यादा मुझे आकर्षित करती हैं। All of those hundreds of thousands of gopis understanding me to be their most charming lover, कि ये जो सारी हजारों गोपियां थी ये मुझे अपना प्रेमी समझते हुए एंड आर्डेंटली डिजायरिंग मी इन दैट वे, केवल मेरी ही इच्छा करती थी पर अनअवेयर ऑफ माय एक्चुअल पोजीशन, मेरी एक्चुअल पोजीशन को जानती नहीं थी, येट बाय इंटीमेटली एसोसिएटिंग विद मी, फिर भी पूरी तरीके से मुझसे संग करने के कारण द गोपीज अटेंड मी, उन्होंने मुझे हासिल किया द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये जो कृष्ण गोपीज की क्वालिटी थी ये बहुत आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि जब कृष्ण प्रकट हुए थे जेल में, तो जब माता देवकी और वसुदेव ने देखा कृष्ण को, तो देवकी ने प्रार्थना करनी शुरू की कृष्ण से कि आप कृपया अपने बच्चे के रूप में दोबारा आ जाइए, क्योंकि अगर कंस देखेगा कि आप विष्णु हैं तो आपको मार देगा। तो हालांकि उसके अंदर प्रेम है कि आप मेरे पुत्र हैं, पर क्या है ऐश्वर्य भी साथ में है कि जानती है विष्णु है, फिर भी डर लगा कि मार देगा। जब कृष्ण ने कंस को मारा और देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, तो जब देवकी ने कृष्ण को देखा, वसुदेव ने कृष्ण को देखा पहली बार, तो देवकी वसुदेव कृष्ण को गले लगाना चाहते थे कि मेरा पुत्र है मैं इसको गले लगाऊं, फिर सोचते थे कि मैं इसको गले कैसे लगा सकती हूँ, ये तो भगवान है मुझे तो इनके पैर छूने चाहिए। तो क्या है मन में दोनों चीजें चल रही थी, गले लगाऊं पैर छू, गले लगाऊं पैर छू, इसलिए क्या बताते हैं आचार्य स्टंट पोजिशन में हुए थे, स्तब्ध हो ना, गले लगा पा रहे थे और ना पैर छू पा रहे थे। परंतु जो गोपियों की स्थिति थी वो वैसी नहीं थी, हालांकि गोपियां जब कृष्ण रास से छोड़कर भाग जाते हैं, गोपियां कहते हैं कि कहां गए कृष्ण जो सुपर सोल है, परमात्मा है सबके हृदय में, परंतु फिर भी जानती है परमात्मा है, परंतु वो गोपियों के प्रेम को नहीं ढक पा रहा। क्या गोपियां उद्धव के पास आती हैं और उद्धव को बताती हैं कि इसने वामन अवतार में आए थे इन्होंने ठगा था, ये राम अवतार में आए थे इन्होंने बलि महाराज को छुपके से मारा था बाली को, जानती है भगवान है गोपियां, पर फिर भी वो ऐश्वर्य ठग, जो ऐश्वर्य का जो ज्ञान था वो प्रेम माधुर्य इतना ज्यादा था कि वो ठग नहीं पा रहा था उसको। तो ये जो क्वालिटीज यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि कवि कृष्ण ने यहां पर बताया गया कि कृष्ण अपने हर भक्त के साथ उतना ही प्रेम, हर भक्त से बराबर का प्रेम करते हैं, उनको बराबर का ध्यान रख सकते हैं। बताया गया कि 100 ट्रिलियन गोपीज हैं, 100 ट्रिलियन का मतलब क्या होगा, कितना कैलकुलेशन होगा, 1 खरब गोपियां थी, और बछड़ों के लिए बताया गया गाय और बछड़े असंख्य, ये तो फिर भी कैलकुलेशन बताई गई है, गाय बछड़ों के लिए बताया भी नहीं गया। तो कृष्ण फिर भी पर्सनली हर एक का ध्यान रखते थे। तो ये सारी बातें हमारे लिए बच्चे को भाग ये सारी बातें हमारे लिए इंस्पिरेशन है, ये सारी बातें हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हमारे लिए भी कुछ स्थान है वैकुंठ जगत में, हमारे लिए भी स्थान है गोलोक में, कि जब कृष्ण इतनों का ध्यान रख सकते हैं तो एक और का ध्यान रख पाएंगे कृष्ण। तो ये सब चीजें, पर जब फिर भी हम ये सुनते हैं तो एक डाउट, एक संशय हमारे मन में आता है कि हमारा हृदय तो इतना कठोर है, इतना सख्त है हमारा हृदय, फिर हम कृष्ण से कैसे प्रेम कर पाएंगे, फिर हम कृष्ण को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, कैसे हम इन क्वालिटीज को अपने डेवलप कर पाएंगे। तो इस फोर्स से हम सीख सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ देयर लव फॉर कृष्णा, कि उनकी जो शक्ति थी, उनकी स्ट्रेंथ थी कृष्ण से प्रेम करने की। तो ये दो वर्स हैं, एक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 6ठे अध्याय का आखिरी और 7वें का पहला, इसमें यहाँ पर बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी की किस प्रकार से हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इसकी आखिरी इसमें बता रहे हैं लाइन में, शुणुवत् श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम, कि जब हम कृष्ण के बारे में, रति हमारी कैसे उत्पन्न होगी कृष्ण के प्रति, कि जब हम कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे, शुणुवत् श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम, जब हम श्रद्धा से कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे तो हमारी कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होगी। और ये 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, पहले से तीसरा कंबाइंड है। इसमें किंग राजा परीक्षित बता रहे हैं, माय लॉर्ड शुकदेव गोस्वामी, हे शुकदेव गोस्वामी, ऑल द वेरियस एक्टिविटीज एग्जिबिटेड बाय द इनकार्नेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड आर सर्टेनली प्लीजिंग टू द ईयर एंड टू द माइंड। जो भी लीलाएं आपने बताई जो कृष्ण ने की है, ये निश्चित रूप से हमारे कर्णों के लिए और हमारे मन, मेरे मन के लिए बहुत आनंद प्रदान करने वाली है। Simply by one's hearing of these activities, the dirty things of one's mind immediately vanish. केवल इनके सुनने मात्र से हमारे हृदय का जो गंध है वो खत्म हो जाएगा। Generally, we are reluctant to hear about the activities of the Lord. हिचकिचाते हैं। अधिकांश हम लोग हिचकिचाते हैं कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। But Krishna's childhood activities are so attractive. कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं, कोई भी कृष्ण की लीलाएं इतनी आकर्षित हैं that they are automatically pleasing to the mind and the ear. ये अपने आप ही बहुत आकर्षित है मन के लिए और कानों के लिए। Thus, one's attachment for hearing about material things, which is the root cause of material existence. इसलिए जो हमारी अटैचमेंट है, one's attachment for hearing about material things, जो हमारी आसक्ति है भौतिक चीजों के बारे में सुनने से, which is the root cause, जो कारण है हमारे भौतिक संसार के बंधन का, vanishes and one gradually develops devotional service to the Supreme Lord. ये खत्म हो जाती है और व्यक्ति स्वतः ही धीरे धीरे भगवान की सेवा में जुड़ जाता है। Attachment for him, कृष्ण से आसक्ति, and friendship with devotees, उन भक्तों से मित्रता, who give us contribution of Krishna consciousness, जो हमारी सहायता करते हैं कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए। ये सब चीजें स्वतः होती हैं। If you think it fit, फिर भी अगर आप सोचते हैं कि मैं योग्य हूं, kindly speak about those activities of the Lord. कृपया भगवान की उन activities के बारे में बताइए। Please describe other pastimes of Krishna, the supreme personality who appeared on this planet Earth. कृपया कृष्ण की और लीलाओं के बारे में बताइए जो उन्होंने इस धरती पर रहकर की। Imitating a human child, एक मनुष्य के बच्चे के समान, and performing wonderful activities like killing putna, और बहुत ही दिव्य लीलाएं की जैसे पूतना को मारना। तो इन क्वालिटीज से जो हमने आज सीखा इसमें, कि किस प्रकार से जो ब्रजवासी थे, जो गोपियां थी, उन्होंने हमेशा अपनी मति को कृष्ण में लगाए रखा, कभी भी कृष्ण को नहीं भूली। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इतने समय के बाद भी कृष्ण कभी गोपियों को नहीं भूले और कृष्ण ने अपनी मति को भी गोपियों में लगाए रखा। और यही कृष्ण कह रहे हैं, यही कृष्ण का रेसिप्रोकेशन है। जितनी सिंसेरिटी हम कृष्ण की सेवा करने में लगाते हैं, जितनी सिंसेरिटी हम ऐसी क्वालिटीज को डेवलप करने में लगाते हैं जो हमारा सहयोग देती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उतनी ही सिंसेरिटी, उतना ही प्रयास कृष्ण करते हैं हमें अपनी ओर खींचने के लिए, और कृष्ण उतना ही हमें याद करते हैं। तो यहां से हम सीख सकते हैं ये, और प्रहलाद महाराज भी यहां पर इसमें यही बता रहे थे कि किस प्रकार चुंबक, जिस प्रकार मुझे खींचती है, किस प्रकार, जिस प्रकार चुंबक एक लोहे को खींचती है, उसी प्रकार मेरी चेतना कृष्ण के प्रति खींची चली जाती है। तो जिस प्रकार चुंबक कृष्ण को खींचती है, एक लोहे को खींचती है, उसी प्रकार गोपियों की चेतना खींची चली जाती है, और जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचती है, उस प्रकार कृष्ण की चेतना भी अपने भक्तों के प्रति खींची चली जाती है। और कृष्ण भी कभी भी किसी समय अपने भक्तों को नहीं भूलते। तो हमारी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी बनती है कि जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि हम अपने आप को एक उस अग्नि में डाल के रखें हमेशा, ताकि जैसे प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते हैं कि अगर हम अपने आप को अग्नि में रखेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे, थोड़े समय के बाद अग्नि के समान बन जाएंगे। वो लोहा गर्म होके, हॉट हॉट हॉटर होके, अग्नि के समान बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अग्नि के अंदर रह के अग्नि के समान गर्म होना है और कभी भी उस अग्नि से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर आप लोहे को बाहर निकाल देंगे तो दोबारा ठंडा हो जाएगा। हमें उस अग्नि में रहना है, अपना को गर्म करना है, अग्नि के समान तपाना है अपनी चेतना को, पर वहां से बाहर नहीं निकलना, हमेशा तपाते रहना है ताकि हम कभी भी कृष्ण को भूले ना। क्योंकि अगर हमारी मति कृष्ण में लगी रहेगी तो कृष्ण भी हमेशा हमें याद करेंगे। जैसे इन चार श्लोकों में कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं उद्धव गीता में कि किस प्रकार 110 वर्षों के बाद भी, 15 वर्षों के बाद भी कृष्ण गोपियों को याद करते हुए क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। जिस प्रकार से भक्त रोते हैं भगवान को याद करते हुए, उस प्रकार कृष्ण भक्तों को याद करते हुए रो रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि सिंसियर एफर्ट्स करें, और हालांकि हम गोपीज को इमिटेट हमें नहीं करना चाहिए, वैसे हम कर ही नहीं सकते, पर प्रयास भी नहीं करनी चाहिए इमिटेट करने की, पर फिर भी ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से और भगवान के भक्तों से कि ये जो क्वालिटीज हैं, इन क्वालिटीज को इन हम अपने जीवन में उतार सकें। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत लेट हो गया, मैं प्रिपेयर नहीं था इसके लिए। हरे कृष्ण। ग्रंथ राशि भागवतम की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।